भक्ति में पूरे एक चित्त होके उतरना है तो उसके लिए हमारे को इस भौतिक जगत से अनासक्त होना भी जरूरी है। और जो हमारे को जैसे इधर जो असुर हैं वो अपने काम वासना के कारण अंधे हो गए, और जो अमृत कलश था वो मोहिनी मूर्ति को दे दिया। तो ऐसे अनेक कारणों से हम अपना भक्ति भी खो बैठ सकते हैं। इतना मेहनत करके इन्होंने कमाया था अमृत, बहुत बहुत लोगों को बहुत मारा मारी हुआ था, लेकिन उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं, अभी हम कुछ तुम कुछ भी कर सकते हो, बांट दो, फेंक दो या खुद ही पी जाओ। तो इतना मेहनत करके पाया लेकिन अभी दे दिया काम वासना को, तो मोहिनी मूर्ति को नहीं दिया, एक्चुअली अपनी काम वासना के कारण दिया। तो अपनी काम के कारण वो फूल अपनी बुद्धि खो बैठे, जैसे ध्याय तो विषयान तुम सब संगस्तेषु जायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोध बुझाते, क्रोधा भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति वंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात मनुष्यति। तो ये स्टेप वाइज फॉल डाउन प्रक्रिया बताया गया है भगवद गीता में। तो जब व्यक्ति कामंधा हो जाता है, अनेक तरीके से अंधे होते हैं, एक अंधा का मतलब सिर्फ इसी से नहीं, आंखों का अंधा नहीं, जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो व्यक्ति देख नहीं सकता, शास्त्र चक्षु द्वारा देख नहीं पाता। एक्चुअली जो भी हम देखते हैं उसको हम आंखों से देखते हैं, लेकिन उसको समझते हैं हम अपनी बुद्धि से हैं कि वो क्या वस्तु है, उससे हमारे को कैसा प्रतिक्रिया करना है, आदान प्रदान करना है, व्यक्ति के साथ कैसा आदान प्रदान करना है या उस परिस्थिति में कैसा आदान प्रदान करना है। लेकिन जब व्यक्ति कामांध हो जाता है, क्रोधांध हो जाता है, लोभांध हो जाता है, तो वो गलत प्रक्रिया करता है, गलत अपने जीवन में वो कुछ गलत कर बैठता है। जैसे इस परिस्थिति में हालांकि मोहिनी मूर्ति तो भगवान ही है, उन्होंने कलश लेके भलाई किया असुरों का, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले हम इस विषय पे थोड़ा रोशनी डालेंगे कि कैसे हम भ्रमित हो जाते हैं किसी की बातों में, जब हम गलत अपने हृदय में गलत भावनाएं, गलत इच्छाएं लेके होते हैं, तो हम कौन हमारा हितकारी है, कौन हमारा हितैषी, कौन हमारा हित चाहता है, कौन हमारा अहित चाहता है, वो देख नहीं पाते। अभी यहाँ पे जैसे मोहिनी मूर्ति ने मांगा, उनसे मांगा भी नहीं, एक्चुअली वो खुद ही प्रलोभित हो गए कि उनको ही दे दें, वो ही बांटेंगी हमारे को, और सब सोच रहे थे कि ये मैं सबसे अच्छा व्यक्ति हूँ, सब असुर सोच रहे थे कि इसकी शादी मेरे से ही होगी, मेरे को ही चुनेगी वो, सबके मन में यही भावना थी, इसलिए उन्होंने अमृत कलश उसको दे दिया कि ये तो मेरे को प्रेम करेगी। तो यही एक जो बहुत ही व्याधि व्यक्ति होता है उसमें भी ऐसी एक चेतना होती है, वो पार्टी में जब जाता है तो इतना सुंदर से डेकोरेट इसलिए करता है मतलब सब लोग मुझे ही देखेंगे, लेकिन कोई भी किसी को नहीं देख रहा, सब अपने आप को ही देख रहा। तो वो अपने मन में ही भावना ये लेके बैठा कि सब लोग मुझे देखना चाहिए। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, श्री श्री प्राणिता की जय, श्री की जय। तो कामांध जब हो जाता है तो व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसका स्वार्थ कहाँ है। वास्तविकता में नते विदु स्वार्थ गतिम हि विष्णु दुराशये भयर्थमान्या। तो व्यक्ति का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु की सेवा में ही है, लेकिन वो किसी भौतिक वस्तुओं के तरफ भोग वासना के कारण जब आकर्षित हो जाता है तो वो समझ नहीं पाता, दुराशय, फिर वो गलत शरण लेता है और फिर वो अपने स्वार्थ को ही खो बैठता है, अपने से ही ईर्ष्या कर रहा है एक तरीके से, अपनी हानि, वो शत्रु सबसे पहला शत्रु वो उसका खुद ही है। जैसे हम जो प्रसंग आता है रामायण में, जब शूर्पणखा को भगवान श्री राम और जब शूर्पणखा ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण की तरफ आगे बढ़ी थी कि हम आपसे विवाह करना चाहते, विवाह बोला था यार बस घूमना चाहते हैं, आनंद करना। तो जो भी, लेकिन लक्ष्मण ने नाक काट दी नासिक में। फिर उसके बाद खरदूषण आए, उनका भी विध्वंस हो गया, पूरी 14,000 सेना को अकेले ही राम जी ने फिनिश कर दिया। फिर उसके बाद ये खबर अकंपन ने रावण को दी कि वो उनका तेज ऐसा है, राम जी का तेज ऐसा है कि कोई नहीं उनके सामने खड़ा हो सकता, और बहुत बहुत उनके जो शौर्य है उसकी प्रशंसा की। तो वो भी दंग थे रावण की, ऐसा कौन सा एक मनुष्य हो सकता है जो इतना शक्तिशाली हो। और उनको याद आया कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान नहीं मांगा कि मनुष्य से ना मारा, बोले अरे मैंने सोचा था मनुष्य तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकते, तो मैंने वो वरदान में सोचा कि दिस इज बिलो स्टैंडर्ड टू आस्क समथिंग लाइक दैट, मेरे गौरव के खिलाफ होगा कि पूछू कि मनुष्य से भी मैं मारा ना जाऊं, तो इसलिए मांगा नहीं था। लेकिन अगर कोई ऐसा पैदा हो गया तो गड़बड़ हो सकती है, तो वो भी थोड़ा सा डर में था कि मैंने ऐसा वरदान नहीं मांगा है। फिर भी बोला कि अभी मैं खत्म करूंगा, तो वो गया मारिच के पास, और मारिच ने उसको अच्छे से पहले खाना खिलाया, फिर उसके बाद उसने बताया कि मैं राम के लिए, एक्चुअली अकंपन ने भी बताया था कि तुम सीता का अपहरण कर लो और क्या होगा कि सीता के विरह में राम मर जाएंगे, ये उसका आइडिया था। तो रावण बहुत खुश हो गया, अच्छा आइडिया था, क्योंकि उसको ऐसे अप्सराओं का भी अपहरण करने में शौक था उसको। तो वो मारिच के पास गए, तो मारिच ने बोला तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, कौन दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन के तुम्हारे कोई ऐसा सलाह दे रहा है, तुम्हें पता नहीं है राम कौन है, मैंने एक बार देखा है उसका और उसके बाद मैं कभी नहीं देखना चाहता, दो असुर तो मर गए, मैं भाग के किसी तरह बच गया और इसलिए तपस्या कर रहा हूं अभी बैठ के, कोई नहीं उनके सामने खड़ा हो सकता है। जहां र शब्द से कुछ बोलता है तो मेरे को डर लग जाता है, क्योंकि राम 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 राम, तो राम के सामने मत जाओ, ये राम बहुत बड़ा व्यक्ति है, इसके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। तो वो उसको फिर से याद आया, हाँ ब्रह्मा जी ने भी बोला था, मतलब ब्रह्मा जी से भी मैंने मनुष्य से वरदान नहीं लिया है, चलो टाल देते हैं ये, क्या फालतू में अपने को परेशान करना। तो वापिस चला गया। फिर शूर्पणखा आई और शूर्पणखा ने बोला, हे रावण कायर हो गए हो क्या, तुम्हारे को अगर राज्य गद्दी पे बैठना है तो अपने प्रजा को संरक्षण देना चाहिए, क्या तुम बस अब सुर देवताओं से बैर करके लेकिन अभी शांति से बस मौज मस्ती में लगे हो। तो उसको बिल्कुल गुस्सा, ऐसा कैसे बोला अभी तो, उसके बाद वो बोली कि राम बहुत शक्तिशाली है और मैं तुम्हारे लिए सीता को ला रही थी, एक्चुअली उसका कोई प्लान नहीं था सीता को लाने का उसके लिए, लेकिन वो बोली मैं तुम्हारे लिए सीता को ला रही थी। और वो जानती थी कि रावण कामी व्यक्ति है, तो वो उसके काम वासना को उजागर किया उसने, उसने बताया सीता मैया के सौंदर्य के का वर्णन दिया, तो वो उसका काम वासना पूरा एक बड़ी आग की तरह हो गया। वो बोला अभी मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, सीता को भी लेके आऊंगा। तो ऐसे शूर्पणखा उसकी हितैषी नहीं थी, उसका सुख नहीं चाहती थी, तो भोग वासना में जो हमारे को डालने की कोशिश करता है वो हमारा हितैषी नहीं है, हमारे को भगवान राम से दूर ले जा रहा है, हमारे को भगवान की सेवा से दूर ले जा रहा है। जैसे आजकल के एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट वाले शूर्पणखा का ही आइडिया है उनका, वो बोलते हैं बाय वन गेट वन फ्री, एक लो एक मुफ्त मिलेगा, कोई मुफ्त मिलता है कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, तो वो दो चीजों का पैसा एक में ही ले रहे हैं इसका मतलब। और फिर वो बोल रहे कि तो बाय वन गेट वन फ्री, और वो कैसा एडवर्टीजमेंट होता है, एडवर्टीजमेंट है बॉटल का, ऑक्सीरिज बॉटल, लेकिन बॉटल के साथ एक स्त्री को जोड़ देंगे, अभी जो पानी की शुद्धता है वो स्त्री के पास में होने से बढ़ती नहीं है, लेकिन जीवात्मा की जो काम वासना है वो बढ़ जाती है, तो वो बॉटल खरीद लेगा। ऐसे वो जो कार दिखाएंगे, कार में यू कैन ड्राइव योर गर्लफ्रेंड होम, अभी गर्लफ्रेंड को घर, मतलब वो गाड़ी से, गाड़ी की जो क्रेडिबिलिटी है, जो उसका योग्यता है वो इंजीनियर से पूछना चाहिए, लेकिन इंजीनियर को नहीं सामने खड़ा कर दिया, क्योंकि उसके भाव जो काम वासना की भावना है उसको आगे कर देते हैं, वो फिर वो पागल हो जाते हैं, फिर उसको लगता है हाँ मेरे हित के लिए बोल रहे हैं, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ बैठ गई, तो ऐसे व्यक्ति पागल हो जाता है काम आंदा। तो ऐसे अनेक तरीके से अभी कैसे मॉल मॉल जो बनाते हैं शॉपिंग मॉल, तो वो क्या है पूरा सुपना का टेक्नोलॉजी डिस्क्राइब करते हैं, सब चीजों को दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक्चुअली म्यूजिक भी लगाते हैं उसमें, म्यूजिक ऐसा लगाते हैं जिससे व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं बढ़ जाए। अभी जो रॉक म्यूजिक होता है ढूम ढूम वो ड्रम्स बजाते हैं, उससे रजोगुण जो तमोगुण है वो बढ़ जाता है, फिर उसमें वो सब इच्छाएं भी बढ़ जाती है, फिर व्यक्ति खूब ज्यादा खरीदता है। तो ये सब स्ट्रैटेजी है, और आप अगर एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट वाले लोगों से मिलेंगे तो उनको ये सब स्ट्रैटेजीज पता है, और वो उसको यूज करते हैं किस लिए, जिससे पैसा आएगा। अभी जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है, मेडिकल एक्चुअली स्वास्थ्य के लिए पहले हमारे देश में हॉस्पिटल बड़े बड़े हॉस्पिटल नहीं खुले थे, एक वैद्य होता था वो बेचारा एक एक किसी के सामने कोई बीमार पड़ गया तो देखने जाता था, एक गांव में एक वैद्य काफी था। अभी बोलते हैं हॉस्पिटल खोला है हमने गांव में, और कैसा है इतने सारे बिस्तर हैं, क्यों इतने सारे बिस्तर की जरूरत है, क्योंकि बहुत सब लोग पाप कर रहे हैं तो बहुत लोगों को परेशानी होगी, तो बहुत सारे डॉक्टर और बहुत सारे बिस्तर लगेंगे। और इतना कमर्शलाइज हो गया है कि अभी जो मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, दवाई की कंपनियां हैं, वो पहले दवाई का वायरस छोड़ती हैं और उसके बाद उसका एंटीडोट छोड़ती है, तो पैसा तो देगा ही ना आदमी, और हर बार नया वायरस छोड़ के, मेरे फादर डॉक्टर हैं तो हर साल वायरस बदल जाता है, इसलिए हर बार वैक्सीन लगाना पड़े। तो अभी वैक्सीन लगाते रहो, खुद के शरीर को भी कमजोर करते रहो और पैसा भी देते रहो उन लोगों को। तो ये पूरा जो काम के कारण एक दूसरे को शोषण कर रहे हैं ये बात है। प्रभुपाद बोलते थे चीटर्स एंड चीटेड, कुछ लोग चीट होना चाहते हैं। अभी रावण अगर बुद्धिमान हो तो वो बोलेगा देखो तुमने गलत किया, तुमने राम को गलत राम के पास ऐसे नहीं जाना था वो, लेकिन किसने उसे प्रलोभित हुआ, क्योंकि खुद भी वो चीट को क्या बोलते हैं धोखा खाना चाहता है, धोखा खाना भी चाहता है, ऐसा तो कोई नहीं होगा कि जो धोखा खाना चाहता है, नहीं वो अपने काम वासना के कारण धोखा खाना चाहता है। तो व्यक्ति अपने ही वासनाओं के कारण शत्रु बन जाता है अपना ही, वो अहित में ही अपना हित देखता है, इसको ही अविद्या बोलते हैं। अविद्या में अविद्या का मतलब है जब अशुद्ध चीज को शुद्ध की तरह देखना, क्षणिक चीज को शाश्वत समझना। तो ऐसे जब व्यक्ति अविद्या में पड़ जाता है तो अनेक तरीके के गलत धारणाएं बैठ जाती हैं, और जो लोग उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा इस भोग वस्तु के को पाने में, उसको वो दोस्त समझता है, और कोई उस वस्तु को ले जाता है उसको वो दुश्मन समझता है। तो दोस्ती और दुश्मनी भी इसी तरह बनाता है, और ये पूरा संसार इसी तरह चल रहा है, सब लोग एक दूसरे के बैर और मित्र बने हुए हैं। कैसे, ये तो मेरा कितना अच्छा प्रशंसा करता है मेरी, तो कोई प्रशंसा करता है तो उसको मित्र समझते हैं, शुभचिंतक समझते हैं, लेकिन हो सकता है वो वैरी हो, क्यों, क्योंकि वो भगवान से दूर ले जा रहा है। जैसे हम अपने सेंटर्स में यूथ सेंटर में भक्तों को बोलते हैं कि देखिए सुबह उठना चाहिए 4:30 बजे मंगल आरती जप में आना है, हमारा जप होता है पहले उसके बाद मंगल आरती होता है सेंटर में, युवकों के सेंटर में, तो 4:30 बजे डॉट आना है, और वरना महामंत्र लिखना होगा, तो ऐसा हमारा वो रहता है। तो कुछ भक्त अगर शुरू शुरू में जब वो पूरा खरे नहीं भक्ति में पूरा उतरे नहीं है तो उनको लगता है कि कितना कितना जल्लाद जैसा हमारे साथ ना? और वो जब घर जाते हैं तो मम्मी बोलती है बेटा सोते रहे ना? कोई बात नहीं बेटा, देर से उठ के जब कर लेना, कोई बात नहीं, भगवान तो है ही ना तेरे साथ। तो उनको लगता है देख मेरे, देखो मेरी मम्मी कितना प्रेम करती है, और ये जो सेंटर वाले वो प्रेम नहीं करते। तो प्रेम कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है वो हमारे को अपने भौतिक धारणा से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा ये जीवन बहुत ही क्षणिक है और उसमें क्या भोग वस्तु का हम आस्वादन करेंगे। ये सब भोग वस्तु ही बंधन का कारण है और भोग वस्तु में जितना भोग जो डाल रहा है वो हमारा शत्रु है, क्योंकि उसके कारण हम इस भौतिक जगत में और भोग करने की इच्छा हमारी प्रबल हो जाती है और कोई हमारे भोग वस्तु को निकाल रहा है वो वास्तविक हमारा शुभ चिंतक है। जैसे एक बार भक्ति सिद्धांत सती ठाकुर एक कथा बताते हैं कि एक बार एक बंदरों का एक समूह था एक राजमहल में, तो उसमें क्या था कि ये जो राजा था वो जो राजा का जो कुक था कुक वो कब जो लकड़ी होती थी वो फेंकता था और लकड़ी गर्म आग की लकड़ी को फेंक देता था। तो एक वरिष्ठ बंदर ने इसको देखा प्रक्रिया को, तो वो बोला देखो हमारे को यहाँ छोड़ देना चाहिए ये सारा जगह। लेकिन बंदर लोग बोले क्यों यहाँ पर तो हमारे को अच्छे फ्रूट्स एंड नट्स मिलते हैं, हमारे को बहुत खाने को मिलता है, ये राजमहल है अच्छा लगता है। बोले देखो वो लकड़ी फेंकता है वो जाके आग उसको घास को पकड़ेगी और वो उसको घोड़े की खाल को जलाएगा और घोड़े की खाल जब जलेगी तो जब वैद्य बोलेगा कि इसके लिए बंदर की खाल से ही ठीक हो सकता है तो फिर राजा आप सबको पकड़ के हमारी खाल उधेड़ के घोड़े को ठीक करेगा। बोलेगा तो सठिया गया है इसको क्या पता है ये सब बड़ी बड़ी कहानियां बना रहा है। तो बोले देखिए मैंने तो बता दिया आपको, आपको भोग करने की इच्छा तो करिए मैं तो चला। तो वो चल दिया, उसके बाद क्या हुआ वही हुआ, एक दिन लकड़ी फेंकी आग लगी घोड़े के जले और वैद्य ने बोला तो सारे बंदरों की खाल उधेड़ के घोड़ों को लगा दी गई। तो ये भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं ये जो ओल्ड मंकी था वृद्ध बंदर था वो समझदार वैष्णव जैसा है और उसकी बात नहीं सुनते जब भोग तृप्ति में लिप्त होता व्यक्ति, वो सोचते कि इसको कुछ क्या पता ज्यादा ही कहानी बनाता है हम थोड़ी फंसेंगे ऐसे। तो जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं कभी कभी बोलते हैं इतना इतना मत खाओ इतना मत भोग वस्तुओं से हमें दूर ले जाने की कोशिश करते तो हम उनको ही शत्रु समझते हैं। अगर हमारे मन और इंद्रियों पे संयम लाने के लिए कुछ वरिष्ठ भक्त या हमारे अहंकार पे वरिष्ठ भक्त संयम लाने के लिए कुछ प्रक्रिया करते हैं या बताते हैं वो तो हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक है। लेकिन जब व्यक्ति स्वार्थ को गलत समझ बैठता है नते विदु, विदु मतलब जानता ही नहीं है विदु मतलब जानना, तो नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु की सेवा में मेरा वास्तविक स्वार्थ है, दुराशय, तो फिर क्या करेगा वो अपने जो बाकी कुछ भक्त होंगे उसके साथ मिलकर बोलेगा देखो वो अथॉरिटी खराब है हमारा सब हमारा भोग का हमारे लिए ठीक से हमारी सेवा नहीं करते। तो वास्तविकता में हमें देखना चाहिए अगर कोई भी भक्त हमारे को सेवा में लगा रहा है और भोग वस्तुओं से या अहंकार के कारणों से दूर ले जा रहा है वही हमारा वास्तविक शुभ चिंतक है, क्योंकि ये अहंकार बहुत बड़ा हमारा शत्रु है, इस जगत का सबसे बड़ा शत्रु अहंकार ही है। तो कभी कभी हम कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं और वो प्रोजेक्ट से हटाना पड़ रहा है, लेकिन क्यों, जिससे हमारा अहंकार और बढ़े ना, तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि गोलोक जाने के लिए बहुत पूरा अहंकार छोड़ना पड़ेगा, हमें वास्तविक अमृत का को चखना है तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे जो हमारे प्रामाणिक भक्त होते हैं वो ऐसे शुभ चिंतकों को बहुत ध्यान से लेते हैं और जो व्यक्ति अपने भोग में पड़ जाता है फिर वो अपने एक दूसरे में भी झगड़ा करते हैं जैसे ये असुर, क्योंकि गोलोक जाने के लिए कोई झगड़ा नहीं है, गोलोक का रास्ता क्लियर है, सेवा करो सबका विनम्र बन के सबकी सेवा करो। लेकिन जो हुड़ा हुड़ी है जो क्या बोलते हैं कंपटीशन लगा हुआ है वो उसे भोग के उस भोग के रास्ते पे ट्रैफिक जाम है, सेवा के रास्ते पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं खाली है। जैसे अगर कोई बोले कि प्रभु जी क्या मैं बैकअप कर दूं क्या, जरूर आइए आइए आइए, कोई बोलेगा क्या अरे सेवा नहीं है बैकअप की, कोई बोले प्रभु जी मैं चटाई रोल कर दूं क्या, कोई मना करेगा क्या? तो सेवा के लिए तो सब नो खाली खाली रास्ता है, लेकिन मैं मंगल आरती गाऊंगा आज, नहीं क्यों आप क्यों गाएंगे, नहीं वो गाएगा है ना, तो वो कौन माइक पकड़ेगा या कौन कौन लेक्चर देगा, कौन जो उपाधियां होती है ना, जो स्पेशल उपाधि होती है उसके लिए एक दौड़ होती है। तो इधर वो बोले मैं पहले पीऊंगा अमृत, एक्चुअली अमृत कलश जब भगवान ने लिया तो वो सुरों के लिए भी अच्छा हुआ और असुरों के लिए भी अच्छा हुआ। अभी मैं इस बात पे बताना चाहूंगा, क्योंकि क्या है अभी हम इसमें देख रहे हैं कि जो भगवान मोहिनी मूर्ति की तरह आए तो उन्होंने एक तरीके से धोखा दिया असुरों को, लेकिन फिर लग सकता है कि भगवान भी धोखा देते हैं, ऐसा क्यों दिया, फिर क्या भगवान भी पार्शियल पार्शियल पक्षपात करते हैं, क्या भगवान भी वैसे ही हैं, वो भी दोस्त वो असुरों के साथ दोस्ती कर लिया है और असुरों के साथ दुश्मनी है, कुछ ऐसा है क्या? एक्चुअली सातवें स्कंध का पहला अध्याय इसी पे है पूरा, कि भगवान तो इस पूरे जगत से परे हैं, उनको क्या करना है इस जगत से, वो तो आत्माराम है, लेकिन फिर क्यों ऐसा होता है कि वो जो सुरों का मदद कर रहे हैं, सुरों को अमृत दे दिया और असुरों से अमृत ले लिया। तो भगवान इस जगत में सब जीवात्माओं के कल्याण के लिए आता है, इस जगत में एक ही तरीके से हमारा कल्याण हो सकता है, वो है जब हम भगवान की सेवा में लगे, हमारा एक ही स्वरूप यही है, जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। और सुरों का एक लक्षण ये है, भले उनमें भी भौतिक इच्छाएं होती हैं, लेकिन वो भगवान का आदेश स्वीकार करते हैं, भगवान की बात मानते हैं, भगवान ने बोला देखो असुरों के साथ मिलके तुम ये समुद्र मंथन करो तो बात मान ली उन्होंने, ये नहीं कि असुरों के साथ क्यों मिले, ऐसा नहीं। अभी असुरों को भगवान ने बोला देखो तुम वासुकी के सामने वाले अंग को लो और फिर वो मंथन करो, तो जो असुर होता है उसका एक लक्षण ही होता है, वो बोलता है वो हमेशा उल्टा ही सोचता है, बोलता है भगवान आप सामने का बोल रहे हैं तो पीछे वाला नहीं, सॉरी सॉरी भगवान ने बोला पीछे खड़े हो, तो वो बोले पीछे क्यों खड़े होंगे, हम कुछ भी पीछे नहीं करते, हम आगे करेंगे, ठीक है आगे खड़े हो जाओ, तो वो स्वीकार नहीं करते, भगवान का आदेश हमारे लिए हमारे हित के लिए है, वो स्वीकार नहीं करते, उनमें श्रद्धा नहीं है कि भगवान हमारा हित करेंगे, तो वो क्या करते हैं वो वासुकी के सामने वाले उनको ले लेते हैं, और फिर जब उस मंथन चालू होता है तो वासुकी से जो आग निकलती है वो पूरे हमारे उनके अंग को जला देता है असुर, तो वो दुखी होते हैं। तो जब भगवान की आदेश को स्वीकार नहीं करते तो व्यक्ति दुख का ही पात्र बनता है, और इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है, भगवान तो सबका हित ही चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति बात नहीं मानता तो वो दुखी होता है, पर असुर बात नहीं मानते और सुर बात मानते हैं, भगवान के सुर में सुर मिलाने वालों को सुर बोलते हैं और भगवान के सुर में सुर ना मिलाने वालों को असुर बोलते हैं। तो कैसा है जो जैसे रावण अभी बात नहीं माना, रावण मरीच की बात नहीं माना, मरीची की बात नहीं माना और ये शुपनका की बात मान गया, लेकिन विभीषण ने फिर भी अच्छी सलाह दी फिर से, लेकिन उसने बोला तुम मेरे दुश्मन हो तुम नहीं जानते, उनको भी तिरस्कार कर दिया, लेकिन भगवान ने विभीषण को स्वीकार किया, भले ही वो भी राक्षस जाति से ही था, सब बंदर वानर लोग बोल रहे थे इनको कैसे स्वीकार कर सकते हो, ये तो रावण का भाई है, ये हमारा दुश्मन है, लेकिन भगवान किसी की तरफ द्वेष भावना नहीं रखते, समूहम सर्वभूतेषु, भगवान तो सबको ही प्रेम करते हैं, और जो भी भगवान के जो कल्याण कार्य में मदद करता है उसमें शामिल होता है उसको स्वीकार करते हैं। तो भगवान ने विभीषण को पूरी तरह स्वीकार किया और बाद में राज्य अभिषेक भी किया, तो वो तो बोले अगर रावण भी आता है उसको भी माफ कर दूंगा आज, तो भगवान में किसी के लिए द्वेष नहीं है, भगवान सिर्फ सबका हित ही चाहते हैं। और इधर अभी उन्होंने उनसे कलश ले लिया तो इसमें असुरों का क्या हित चाहिए, हाँ असुर अगर एक्चुअली क्या है भगवान का योजना, भगवान चाहते हैं कि यहाँ पे ब्राह्मणिकल समाज स्थापित हो जिसमें सब वेदों का पालन करें। देखिए भगवान ने रावण को हटाया, विभीषण को स्थापित किया, और जो ये हिरण्यकशिपु को हटाया, प्रहलाद को स्थापित किया। तो ऐसे भगवान हरेक परिस्थिति में अपने को राजा या यहाँ की राजगद्दी पे नहीं बैठने देते। भगवान सिर्फ जैसे कौरवों को हटा के युधिष्ठिर को स्थापित किया, तो हरेक परिस्थिति में भगवान वो चाहते हैं कि जो भक्त हैं, जो मेरे सेवा के अनुरूप लोगों को प्रशस्त करेंगे, वो लोगों को राज सिंहासन पे बैठाएं, जिससे सब जीवात्माओं का कल्याण हो, वो गोलोक जाएं। क्योंकि ब्राह्मण समाज जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणिकल समाज है, उसमें सभी जीवात्माओं को भगवान की तरफ प्रशस्त किया जाता है, जिससे सब जीवात्मा का कल्याण होगा। इसमें भी भगवान का कोई स्वार्थ नहीं है कि सब मेरी तरफ आए। भगवान तो सेवक को लीला की तरह स्वीकार करते हैं, जिससे जीवात्मा को भी आनंद का अनुभव हो। क्योंकि हमारा जो वास्तविक सुख है वो भगवान की सेवा में, नते विदु स्वार्थ गति विष्णु, भगवान की सेवा में हमारा स्वार्थ है। इस स्वार्थ को समझ गया जो जीवात्मा, वो सुखी हो जाता है। तो इसलिए भगवान जब असुरों से जो विष्णु अमृत का कलश ले रहे हैं, क्योंकि अमृत अगर असुर लोग पिएंगे तो वो बड़ा उत्तंड मचाएंगे पूरे जगत में, और वो और शक्तिशाली हो जाएंगे। जैसे हिरण्यकश्यपु शक्तिशाली हो गया तो फिर उसने खूब ब्राह्मणिकल जो कार्य थे उनको खत्म किया। कंस भी ऐसे ही। तो ये जो असुर लोग होते हैं वो सब गलत कार्य करते हैं और ब्राह्मणिकल समाज को खराब करते हैं, इसके लिए उनको शक्ति देना अच्छा नहीं है, इसलिए भगवान ने उनसे अमृत ले लिया। तो भगवान को ऐसा नहीं कि सुरों से कुछ ज्यादा आसक्ति हो गई है। भगवान तो देखते हैं कि कौन उनकी उनके जो धर्म का कार्य है उसमें आगे बढ़ रहा है। और हम भी अगर इसी तरह जैसे शिला प्रभुपाद ने ये पूरे संस्था की स्थापना करी कि धर्म आगे बढ़े, तो उसमें जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो हमारे को भगवान हमेशा मदद करेंगे। और जैसे कई लोग पूरे जगत में अभी अधर्मिक कार्य में लगे हुए हैं, तो उनका जो विध्वंस है वो स्वाभाविक है। भगवान अभी हम बोलेंगे जीवात्मा तो भक्त भी मरते ही हैं, मरना और ना मरना वो तो भगवान के हाथ में है, और मरेंगे एक दिन हम सब। लेकिन भगवान के सेवा में लगने से हमें वास्तविक सुख का अनुभव होगा, और बाकी सब लोग परेशान ही रहते हैं बिकॉज क्योंकि वो क्षणिक चीजों में आसक्त हैं ना। सदा सुमद्विघ्न ध्यान असत क्रिया, क्योंकि उन्होंने असत को पकड़ा है, सत को नहीं पकड़ा है, इसलिए वो दुखी रहेंगे। अभी इधर देखते हैं अमृत, अमृत तो अपने आप में भी एक्चुअली सत नहीं है, एक तरीके से अमृत भौतिक जगत का ही एक स्वार्थ है। तो इसीलिए सुर और असुर दोनों ही एक तरीके से थोड़ा स्वार्थी हैं, लेकिन सुर कम से कम भगवान के आदेश को मानते हैं। लेकिन हमारे को जो अमृत मिल रहा है वो है भगवान के सेवा का अमृत, तो उसको पाने के लिए हमारे को सब स्वार्थ बाकी छोड़ देने और भगवान और प्रभुपाद की सेवा में लगना चाहिए। तो जितना हम सार में यही बोलना चाहूँगा कि हमें जो लोग भगवान की सेवा से विमुख करते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण पहले भी देना चाहता था कि मंथरा ने जो कैकेयी थी उसको भगवान से विमुख कर दिया अपने गलत सुझाव दे के, और प्रहलाद जब हिरण्यकश्यपु को अच्छा जवाब दे रहा था तो उनको दुश्मन समझ गए। तो ये गलत धारणाएं बन जाती हैं। लेकिन जो हमारे को भगवान की सेवा में किसी तरह भी प्रशस्त करे और भौतिक वस्तुओं से दूर ले जाए, वो हमारे शुभ चिंतक हैं, और उनकी सेवा में हमें हमेशा लगे रहना चाहिए, भगवान की सेवा में उनके आदेश अनुसार सेवा करना चाहिए। मैं यही बिना विराम दूंगा, कोई सवाल हो, कोई कमी, कुछ गलती हो तो बता।
हरे कृष्ण पूरी धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें जैसा आपने बताया, आप बता रहे थे तो कि हमें सीनियर्स या भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कभी कभी हमारे अहंकार को कम करने के लिए हमें सेवा से हटाएंगे, या जैसा आपने बताया कि भगवान ने असुरों का भलाई किया कि उन्हें अमृत नहीं दिया, लेकिन असुरों के पार्ट पे अगर देखें प्रोजी तो असुरों को तो ऐसा लगेगा कि भगवान ने उनके साथ पक्षपात किया और वो उनकी असुरिक भावना और भगवान के प्रति ईर्ष्या और बढ़ी जाएगी। या फिर जो भक्त जिसको सेवा से हटाया है जैसे, तो हो सकता है वो सीनियर्स के प्रति और अपना समर्पण ना बढ़ा के और ज्यादा रिबेलियस हो जाए, तो वो उसके लिए प्रोजेक्ट कैसे मतलब उसे समझना चाहिए।
तो देखिए यही असुरों का स्वभाव ही है, लेकिन हम असुरों के बारे में इसीलिए समझ रहे जैसे हमारा असुर का नाश हो, हम असुर ना बने। हम अगर हमसे कलश लिया भी जाए तो भी ठीक है, कलश दे भी दिया जाए तो भी ठीक है, जो हमारे को बोला जा रहा है वो करेंगे, जो बोला सो कर। यही तो पढ़ने का लाभ है कि हम समझ जाएंगे ये असुर की वृत्ति है, हम असुरों की वृत्ति से नहीं जीना चाहते। तो इसीलिए भागवत पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन में हम गलत जगह ना जाए। तो अभी जब व्यक्ति को अगर फील हो रहा है कि ऐसा हमारे साथ गलत किया गया, तो कुछ भक्तों के का जिनमें हमारे को ऐसी श्रद्धा है कि वो तो हमारे को गोलोक की तरफ ही ले जाना चाहते हैं, ऐसे कुछ तो भक्त होने चाहिए जिनमें हमारी ऐसी श्रद्धा है, और जब वो हमारे को कुछ ऐसा बोले तो हमारे को स्वीकार करना चाहिए। वरना बेसिकली हमने समझ लिया कि हम अभी सब चीज़ों के परे हैं, हमारे को पता है, तो बहुत अभी वो अहंकार के कारण मारा जाएगा भक्ति। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में समझ लिया है अगर ये मेरा कान खींचेंगे तो मैं हमेशा उनकी बात मानूंगा, कुछ भक्त तो ऐसे बनाने चाहिए। अभी सभी भक्त बोले कि अरे इसको कैसे बोलूंगा, कुछ बुरा मान जाएगा, बुरा मान जाएगा, इसका मतलब तो हमारे सारे शुभ चिंता खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब हमसे डरते हैं। कम से कम एक दो भक्तों को तो डर नहीं लगना चाहिए बोलने में, प्रभु यू आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन कम से कम। तो जब वो बोलते हैं वो तो हमारा अथॉरिटी वो ना हो, लेकिन अगर अथॉरिटी ने कुछ किया है तो जो हमारे ऐसे शुभ चिंतक हैं उनसे बात करना चाहिए, और वो शुभ चिंतक अथॉरिटी के साथ समझ के बता सकते हैं हमारे लिए क्यों भला है। तो हमारे को जानना चाहिए कि हमारे भले के लिए कुछ वरिष्ठ भक्त चिंतित हैं, और वैसे ही सेवा हो उसको सेवा में लगा रहे हैं ना, झाड़ू पोछा करने को दे दिया ना, कम से कम सेवा तो दिया ना, सेवा नहीं दिया तो वो वायलेंस है, हिंसा है। जीवात्मा का जन्मसिद्ध अधिकार है सेवा करना, तो कुछ भी सेवा नहीं दिया ये तो सबसे बड़ी पनिशमेंट हो जाएगी। तो जैसे मैं भक्ति विद्यापूर्ण महाराज का गुरुकुल है ना, तो वहां पे सुन रहा था कि जब कोई सेवा नहीं करता ना ठीक से तो उसकी कुछ दिन के लिए सेवा निकाल दी जाती है, और वो पनिशमेंट है, पनिशमेंट है, उसको बहुत बुरा लगता है। अभी कोई व्यक्ति का सेवा भाव ही ना हो तो उसको निकाल दिया जाए तो वो बहुत अच्छा लगेगा, उसका अरे सेवा ही चली गई अच्छा हो। लेकिन सेवा भाव जिसमें उसकी सेवा चली जाती है तो उसको लगता है अरे सेवा ही नहीं दे रहे ये तो, जैसे हनुमान जी को लग रहा था अरे सब बंदर को सेवा दे दिया मुझे सेवा नहीं दे रहे। जब वो वापिस अयोध्या गए तो सीता मैया ने सबको सेवा दिया और सब बोले थे हनुमान जी को थोड़ा बाजू करो वरना वो सारी सेवा कर रहे थे, तो हनुमान जी को लग रहा था सेवा के बिना कैसे जीऊंगा, मेरा नाम ही दास है, मैं दास ही हूँ भगवान, तो कुछ तो सेवा देंगे ना हमारे को भक्तों के सेवा। देखिए काल कृष्ण दास को भगवान ने रिजेक्ट किया लेकिन भक्तों ने सेवा में लगा ली, सच्ची माँ को जाके आप भगवान की लीला सुनाइए। तो भगवान के भक्त बहुत कृपालु रहते हैं, सेवा तो देते हैं, कुछ तो सेवा दे देंगे, जूतों का शूज देखो ना, जीवन जीवन भर पोछा लगाने को दिया तो वो भी ठीक है, लेकिन गोलोक जाने देना, आपके संग लेने देना, तो सेवा दे देना, कहीं पर प्रसाद दे देना, बस क्या सेवा, कौन सी सेवा बड़ी कौन सी छोटी। प्रभुपाद बोलते हैं एक कथा में कि जो राधा रानी की सेवा है और भगवान के चरणों पे जो चीटी रेंग रही है, दोनों की सेवा से भगवान खुश है। तो किसकी सेवा बड़ी किसकी छोटी, हम सब सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से जो सेवा करता है उससे भगवान खुश होता है, तो कोई सेवा से वंचित नहीं कर सकता, सेवा भाव है तो सेवा मिल रहा है, सेवा करते रहेंगे। तो यही इसीलिए प्रामाणिक भक्तों के साथ हमें सेवा भाव को और ध्यान देना चाहिए, कौन सी सेवा बनी उस पर इतना सोचना नहीं चाहिए। और कुछ परेशानी है तो अपने वरिष्ठ भक्तों से, जिसमें हमारे जिनमें हमारी श्रद्धा है, उनसे पूछ लेना चाहिए, प्रभुजी इसको कैसे समझूंगे। थैंक यू।
हरे कृष्ण प्रभुजी, ये जैसे इसमें उन्होंने कलश भगवान को दिया तो ये भक्ति होगा? हरे कृष्ण प्रभुजी, जो ये कलश असुरों ने भगवान को दिया तो ये भक्ति का अंग भक्ति होगा उनका?
भक्ति नहीं होगा। देखिए भक्ति में प्रभु शिला भक्ति भक्ति के सामने सिंधु में रूप गोस्वामी ने बोला है अनुकूलन कृष्णानुशीलनम, तो अनुकूल रूप से होना चाहिए। जैसे कल भगवान का स्मरण नित्य रूप से कर रहा था, 24 घंटे भगवान का स्मरण, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, लेकिन वो सोच रहा था ये मेरा मार मेरे को मार देगा, इसलिए मुझे मारना है, तो ये अनुकूल नहीं है। चानन मुष्टिक भगवान को बहुत आनंद दे रहे थे, जब पिटाई कर रहे थे ना तो भगवान को कुश्ती का आनंद आ रहा था, लेकिन उसको भक्ति नहीं कहते, क्योंकि आनंद तो दिया लेकिन आनंद देने की इच्छा नहीं है। और यशोदा मैया कभी कभी भगवान को गुस्सा भी करने दी, जैसे उन्होंने उनको रख दिया और चली गई अंदर दूध को संभालने, लेकिन दूध क्यों संभालना है, क्योंकि वह कृष्णा पियेंगे, पद्मगंधा गायों का दूध भगवान के लिए बनाए हैं तो उबल के गिर ना जाए, तो वो भगवान को गुस्सा आया, लेकिन वो सेवा में किया भगवान के, तो भले गुस्सा भी किया भगवान ने, लेकिन इच्छा क्या थी यशोदा मैया की, भगवान की सेवा। तो अनुकूल होना भगवान की सेवा के लिए, हम भगवान को खुश करने के लिए कुछ कर रहे हैं, वही भक्ति है, दूसरी चीज भक्ति नहीं। धन्यवाद, हम यहाँ पे विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की